कथाबंध सुपुरिस कहानी कीर्तिलता विद्यापति की अपभ्रंश काव्य रचना है। इसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की कीर्ति कथा बड़े समारोह और उत्साह के साथ सुनाई है। वैसे तो इसकी कथावस्तु अत्यंत संक्षिप्त है। राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का वध करके राज्य हड़प लेने वाले अस्लान को जौनपुर के बादशाह इब्राहिम शाह के सहयोग से युद्ध में पराजित करना और राज्य पर पुनः अधिकार करना। लेकिन बीच बीच में जौनपुर नगर, वेश्याहाट, अश्वसेना, हस्तिसेना, राजप्रासाद, तुर्कों और सैनिकों के ब्यौरेबार वर्णन कुछ इस प्रकार गुथे हुए हैं कि समूची रचना अपने समय और समाज का जीता जागता प्रतिबिंब बन गई है। विद्यापति ने इसकी भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि वे कीर्तिलता की रचना राजा कीर्ति सिंह की कीर्तिलता का प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वह कीर्ति सिंह की कीर्तिगाथा तो है ही, लेकिन वह इससे भी अधिक अपने समय और समाज की गाथा बन गई है। कीर्तिलता के कुल चार पल्लव हैं। प्रथम पल्लव इसकी भूमिका जैसा है, जिसमें मंगलाचरण के पश्चात ग्रंथ रचना का उद्देश्य खल निंदा, सज्जन प्रशंसा, वीर पुरुष का लक्षण, ओइनवार वंश के पूर्व राजाओं सहित कीर्ति सिंह का परिचय सम्मिलित है। ग्रंथ रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए विद्यापति कहते हैं कि कलयुग में कविता करने वाले हर घर में हैं, कविता के श्रोता हर गाँव में हैं, काव्य के रसज्ञ भी हर देश में हैं, लेकिन कविता पर प्रसन्न होकर दान देने वाला तो संसार में दुर्लभ है। इसे देखते हुए महाराजा कीर्ति सिंह वाकई महान है, क्योंकि वे काव्य के रचयिता, श्रोता, रसज्ञ और उदारदाता सब कुछ हैं। ऐसे राजा कीर्ति सिंह की कीर्तिलता का प्रसार त्रिभुवन क्षेत्र में करने के लिए शब्दों के खंभे गाड़कर कविता का मंच बांधना आवश्यक है। यह संकल्प लेते ही कवि को स्मरण हो जाता है कि सज्जन को अपने सहज स्वभाव के अनुकूल उसके काव्य की प्रशंसा करेंगे, लेकिन खल उपहास और निंदा करेंगे। अंत में यह सोचकर संतोष करता है कि यदि मेरी भाषा सुरस होगी तो समझने वाले उसकी प्रशंसा अवश्य करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वह रचना किस भाषा में करें। संस्कृत केवल विद्वानों को भाती है और प्राकृत में रस ग्रहण मुश्किल होता है। हाँ, एक देशी बोली ही है जो सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं वैसी ही अवहट्ठ भाषा में काव्य रचना करूँगा। इस प्रारंभिक भूमिका के बाद कहानी की शुरुआत भृंग भृंगी संवाद से होती है। भृंगी पूछती है कि संसार में सार क्या है। भृंग जवाब देता है, मान युक्त जीवन वाले वीर पुरुष का अवतार। फिर भृंगी की जिज्ञासा के उत्तर में भृंग विस्तार से वीर पुरुषों के लक्षण बतलाता है और उदाहरण के तौर पर राजा बलि, राम, भगीरथ और परशुराम के क्रम में कीर्ति सिंह का नाम लेता है। भृंगी पूछती है ये कीर्ति सिंह कौन है, किस वंश के राजा हैं। भृंग बताता है कि वे उस ओइनवार वंश की उपज हैं जिसके राजा अपने पांडित्य, दानवीरता, शूरता, शरणागत रक्षा, सत्य प्रतिज्ञा और सच्चरित्रता के लिए विख्यात हैं। एकमात्र वही वंश है जिसमें भूदेव अर्थात ब्राह्मण और भूपति अर्थात राजा एकत्र पाए जाते हैं। इस वंश में कामेश्वर जैसा व्युत्पन्नमति राजा हुआ, उनके पुत्र हुए राजा भोगेश्वर, भोगेश्वर के पुत्र हुए राजा गणेश्वर और राजा गणेश्वर के पुत्र हुए राजा वीर सिंह। राजा कीर्ति सिंह इन्हीं वीर सिंह के छोटे भाई हैं, जो अपने अतुलनीय विक्रम से विक्रमादित्य के समतुल्य माने जाते हैं, जिन्होंने साहस साधकर बादशाह को प्रसन्न करके दुष्ट के दर्प को चूर्ण किया, पिता के वैर का बदला लिया, डूबते हुए राज्य का उद्धार किया और तरल तलवार की तेज धार से तरंगायत संग्राम समुद्र से फेन सदृश उज्ज्वल यश का उद्धार करके उसका दिगंत पर्यंत विस्तार किया। यहीं प्रथम पल्लव समाप्त हो जाता है। द्वितीय पल्लव का आरंभ भृंगी के द्वारा इस प्रश्न से होता है कि बैर कैसे उत्पन्न हुआ और कीर्ति सिंह ने उसका प्रतिशोध कैसे लिया। इस प्रश्न के उत्तर से ही कहानी का वास्तविक आरंभ होता है। भृंग बतलाता है कि लक्ष्मण सेन के 252वें संवत अर्थात 1119 प्लस 252 अर्थात 1371 ईस्वी में मधुमास के प्रथम पक्ष की पंचमी तिथि को राज्य लुब्ध अस्लान ने राजा कीर्ति सिंह के पिता राजा गणेश्वर को उनके पास बैठकर विश्वास में लेकर धोखे से मार डाला। उनके मरते ही तिरहुत के सारे गुण तिरोहित हो गए और सर्वत्र अराजकता छा गई। राजा के वध के बाद जब अस्लान का क्रोध शांत हुआ तब मन ही मन पछताने लगा कि मैंने नीच कर्म किया है। उसने इसका प्रायश्चित करने के लिए सोचा कि क्यों न कीर्ति सिंह को राज्य वापस लौटा दूं और उसका सम्मान करूं। मान धनी कीर्ति सिंह ने शत्रु का लौटाया हुआ राज्य स्वीकार नहीं किया। माने मंत्रियों, मित्रों और गुरुजनों ने बहुत सीख दी कि राजा गणेश्वर तो अपने भाग्य से सुरपुर चले गए, अब तुम क्रोध छोड़कर शत्रु को मित्र बना लो और तिरहुत का राज भोगो। कीर्ति सिंह ने अपना अटल निश्चय दोहरा दिया कि शत्रु का दिया राज्य अंगीकार करना कायर का काम है। मैं तो वीर पुरुषों की तरह शत्रु के नगर पर धावा मारकर उसे स्वयं धर दबोचूंगा और पिता के वैर का बदला लूंगा। वीर सिंह भी इस विचार से सहमत हो गए। दोनों भाई घर परिवार, घोड़ा, हाथी, नौकर चाकर, नवयौवना पत्नी और सारा राज सुख छोड़कर माँ के चरणों में प्रणाम करके बादशाह से मिलने जौनपुर की ओर पांव पियादे चल पड़े। उन्हें पैदल चलते देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। रास्ते में किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने घोड़ा, किसी ने राह खर्च दिया तो किसी ने ऋण उधार दिया, किसी ने सीधा रास्ता बतला दिया तो किसी ने आतिथ्य किया। इस प्रकार अनेक गांवों, नगरों और निर्जन प्रदेशों को पार करते हुए वे जौनपुर पहुंचे। नगर जल भरी खाई से घिरा था। हरे भरे उपवन में आम और चंपक के वृक्ष सुशोभित थे। दुर्ग के वक्र द्वार, पुष्करणी, खाई पर बने पुल, सोपानों, तोरणों, फव्वारों और जालीदार झरोखों की शोभा देखते बनती थी। सहस्रों भवनों के बीच ध्वजा और स्वर्ण कलश के से मंडित राज प्रसाद दिखाई देता था। जनसमूह आमोद प्रमोद करते, घूमते खेलते, हंसते आते जाते दिखाई देते थे। हाथी घोड़ों की भीड़ में रास्ता पाना मुश्किल था। नगर की सुंदर योजना का क्या कहना, मानो दूसरी अमरावती ही धरती पर उतर आई है। बाजारों में भीड़ भाड़ और शोरगुल के मारे लगता जैसे यह नगर नहीं नरसमुद्र हो। नगर में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अन्य जातियों के लोग एक दूसरे से हिल मिलकर रहते थे। राजपथ पर चलते हुए वेश्याओं के भवन दिखाई देते थे। यहाँ कवि ने विस्तार से उनके सौंदर्य, श्रृंगार, स्वभाव और परिवेश का चित्रण किया है। दोनों राजकुमारों ने देखा कि सभी नागरिक सुखी और प्रसन्न हैं और श्री इब्राहिम शाह के प्रताप से किसी को न चिंता है न शोक। इसके बाद कवि ने विस्तार से तुर्कों के रहन सहन और परिवेश का चित्रण किया है। बाजारों में घूम घूम कर उन्होंने देखा कि हिंदू और तुर्क एक साथ निवास करते हैं, लेकिन अभी उनमें समरसता नहीं आ पाई है। एक का धर्म दूसरे के उपहास का कारण बन जाता है। तुर्क राह चलतों को पकड़कर उनसे बेगार कराते हैं, ब्राह्मण बालक को पकड़कर उसका तिलक पोंछ देते हैं, जनेऊ तोड़ देते हैं, हिंदू कहकर बाहर निकाल देते हैं। छोटा तुर्क भी भभकी मारता है, छोटे तुर्का भभकी मार। लगता है जैसे तुर्क हिंदुओं को निगल जाएंगे, लेकिन सुल्तान के प्रताप से ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए सुल्तान चिरंजीवी हों, चिरजीयो सुल्तान। अंत में दोनों राजकुमार राज दरबार में प्रविष्ट हुए। वहां दूर दूर के राजा महल के द्वार पर ही चक्कर काट रहे थे तैलंग, वंग, चोल, कलिंग देशों के राजपुत्र बादशाह से मिलने को एकत्रित थे। दरबार खास में गरीब भी अपनी फरियाद ले जा सकता था और राजा पर भी हावी हो सकता था। शत्रु हो या मित्र, सबका सिर बादशाह के आगे झुकता था। वहां जाने से सही भय और दुख दूर हो जाते थे। वहां सबसे ऊपर बादशाह था, उससे ऊपर ईश्वर को छोड़कर और कोई न था। दोनों राजकुमारों ने प्रासाद के वास्तु वैभव का दर्शन किया और शाम को एक ब्राह्मण के घर विश्राम किया। यही द्वितीय पल्लव समाप्त होता है। तृतीय पल्लव में भृंगी के द्वारा आगे का वृतांत पूछने पर भृंग बताता है कि सुबह होते ही राजा कीर्ति सिंह वजीर की सेवा में उपस्थित हुए। फिर मंत्रियों की सलाह के मुताबिक बादशाह से भेंट की और निवेदन किया कि हे जोनहा शाह, आज बड़ा शुभ दिन है जो आपके दर्शन हुए। सब कुशल है, लेकिन दो बुरी खबरें भी हैं। एक तो मेरे पिता गणेश्वर स्वर्गवासी हो गए और दूसरे तिरहुत पर असलान ने कब्जा कर लिया। उसने आपके फरमान की अवज्ञा की, फिर राजा गणेश्वर का वध किया और अब बिहार पर कब्जा जमा कर तिरहुत से कर वसूलता है। शत्रु का नाम सुनकर जब आप ही क्रुद्ध न होंगे तो और बेचारे क्या करेंगे। यह सब सुनकर बादशाह क्रोधित हो गया। उसने फौज को तिरहुत की ओर कूच करने का हुक्म दिया। दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी उन्हें सुनाई दिया कि सेना जो पूरब की ओर कूच करने वाली थी अब पश्चिम की ओर कूच करेगी। इससे राजा कीर्ति सिंह सोच में पड़ गए। दोनों भाइयों को हताश देखकर वीर सिंह के मंत्री ने धैर्य और उत्साह बनाए रखने के लिए समझाया बुझाया। सुल्तान का तख्ते रवां चला तो धरती पर कमलिनी के पत्ते के समान कांपने लगे। धूल से आकाश में सूर्य का रथ ढक गया। पैदल सेना के पैरों के आघात से जल भी थल बन गया। दुर्गम स्थानों को पार करते, शत्रु राजाओं को पराजित करते, बंदी बनाते, उनसे कर वसूलते हुए बादशाह ने तमाम द्वीपों और दिशाओं में दिग्विजय यात्रा की। शेर के भाव से पानी खरीदना पड़ता, ईंधन भी चंदन के भाव बिकने लगा, बांदी और बैल समान मूल्य में बिकने लगे। ऐसी स्थिति में दूर दिगंतर तक सेना के साथ चलते चलते दोनों भाइयों को बड़े कष्ट सहने पड़े। शरीर कृश हो गया, कपड़े पुराने हो गए, साथ ही सामग्री समाप्त हो गई, उपवास करने पड़े, घोड़ों को घास दूभर हो गई, साथ के नौकर चाकर भागने लगे। इस विपदा में भी उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपने आचार और आदर्श की रक्षा की। कीर्ति सिंह को माँ की चिंता सताती, फिर यह सोचकर संतोष कर लेते कि तिरहुत में जो हमारे मंत्री अधिकारी और स्वजन हैं, उनके समझाने बुझाने से माँ को निश्चय ही ढाढ़स होगा। अंत में दोनों भाइयों ने सुल्तान से फिर मुलाकात की और अपने कष्ट का निवेदन किया। विधाता प्रसन्न हुआ, समय अनुकूल हुआ, सेना को तिरहुत की ओर कूच करने का शाही फरमान जारी हुआ। चतुर्थ पल्लव का आरंभ भृंगी की जिज्ञासा से होता है कि हे प्रिय बताओ, सेना ने किस प्रकार कूच किया, तिरहुत की धरती कैसे पवित्र हुई और अस्लान ने क्या किया। भृंग ने बताया कि शाही फरमान निकलते ही सेना में शोर मच गया, बाजे बजने लगे, सेना सजने लगी और क्रम से शाही दरवाजे से होकर बाहर निकलने लगी। पहले हस्ती सेना, फिर अश्व सेना, उसके पीछे पैदल सेना। पैदल सेना में तुर्क सिपाहियों की नियमित सेना के साथ साथ धांगड़ों की लटक या अनियमित टुकड़ियां भी शामिल थीं। ये धांगड़ बड़े विकट योद्धा थे। इसके अलावा हिंदू राजपुत्रों का बड़ा दल भी सम्मिलित था, दूर दूर के राजाओं की नींद उड़ाती, मार्ग में अनेक राज्यों और नगरों पर अधिकार करती, आमोद प्रमोद करती। शाही सेना तिरहुत में प्रविष्ट हुई। बादशाह ने दरबार किया और पूछा, अस्लान बड़ा ताकतवर है, उसे कैसे हराया जाए। कीर्ति सिंह ने कहा, सबके देखते देखते मैं अकेले ही उसे धर दबाऊंगा और पुराने बैर का बदला चुकाऊंगा। शाही फरमान पढ़कर सुनाया गया, राजा कीर्ति सिंह का काम पूरा करने के लिए सेना पार हो। बादशाह ने घोड़े पर तैरकर गंडक नदी पार की। अस्लान ने सेना सजाई। राजधानी के पूरब और दोपहर में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। भयंकर युद्ध हुआ। कीर्ति सिंह और अस्लान आमने सामने भिड़ गए, जैसे कर्ण और अर्जुन हो। अस्लान पीठ दिखाकर भाग चला। कीर्ति सिंह ने उसका उपहास करते हुए कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पिता की हत्या की, वह हाथ कहाँ चला गया। तू तो मेरे सामने से पीठ दिखाता हुआ ऐसे जा रहा है जैसे जेठ के सामने से भय हो, अर्थात भ्रातृवधू जाती है। तू तो भगोड़ा कायर है, तुझे जो मारे वह महाकायर कहा जाएगा। जा, भाग जा, समुद्र में डूब मर। इस प्रकार युद्ध जीतकर कीर्ति सिंह लौटे। शंखनाद होने लगा, नृत्य गीत होने लगे। वेद मंत्रों की हंकार के बीच शुभ मुहूर्त में इब्राहिम शाह ने कीर्ति सिंह का राज्याभिषेक किया। बंधु बांधवों में उछाह आ गया। तिरहुत ने अपना खोया हुआ रूप पाया। कीर्ति सिंह फिर राजा हुए। बंधव जन उच्छाह कर तिरहुत पाय रूप, पातशाह जसु तिलक कर कीर्ति सिंह भयो भूप। कीर्ति लता के कथाबंध की एक विशेषता है कथा का यथार्थ के अनुरूप स्वाभाविक विन्यास। कथा को मनचाहा मोड़ देने के लिए जिस प्रकार की कथानक रूढ़ियों के प्रयोग की परंपरा पुरानी कविता में प्रचलित थी, विद्यापति की कीर्ति लता में उनका आश्चर्यजनक अभाव दिखाई पड़ता है। वे चाहते तो किसी के शाप या वरदान का उपयोग करके कथा में थोड़ा चमत्कार का रस मिला देते, रूप परिवर्तन या परकाया प्रवेश का प्रसंग लाकर कुछ रहस्य रोमांच पैदा करते, और कुछ नहीं तो कोई आकाशवाणी ही करा देते, या फिर निर्जन वन में घोड़ा भटक जाता और कुछ अप्सराओं या सुंदरियों से कीर्ति सिंह का साक्षात्कार हो जाता। इससे कहानी में रोमांस का मसाला मिलाने में सुविधा होता। यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा बड़े काम की सिद्ध होती, लेकिन विद्यापति का नवीनता प्रेमी मन इन रूढ़ियों के अनुकरण में नहीं रमा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, उद्धरण चिन्ह, इस पुस्तक में उन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुत कम किया गया है जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं में एक ही प्रकार के अभिप्राय ला देती है और तथ्यात्मक जगत से कम संबंध रखकर कल्पना की विलास की ओर पाठक का मन मोड़ दिया करती है। उद्धरण चिन्ह बंद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पृष्ठ 80। भृंग द्वारा भृंगी को कहानी सुनाना कीर्तिलता में यह एक कथानक रूढ़ी ही है, लेकिन मुख्य कथा का प्रवाह इससे प्रभावित नहीं है। भृंग ने जो सुपुरिस कहानी सुनाई है वह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की उन रचना रूढ़ियों से मुक्त है जिनकी ओर द्विवेदी जी ने संकेत किया है। कीर्तिलता के कथाबंध का संबंध अधिक से अधिक तथ्यात्मक जगत से है और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रूढ़ियों को देखते हुए यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस प्रकार कथाबंध सुपुरुष कहानी शीर्षक यह निबंध समाप्त होता है।